الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے قرآن کریم کی سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے اور مختصر وقت میں اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورت ایک مختصر سی سورت ہے اور اس کے الفاظ اگر دیکھے جائیں تو تھوڑے سے ہیں، لیکن اپنے اندر بڑی عظیم ہدایت رکھتی ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ جب کبھی وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس ختم ہونے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. مقصد یہ تھا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بڑی عظیم ہدایت عطا فرمائی ہے اس کی یاد دہانی ہو جائے. سورت کا ترجمہ یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اور وقت کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے और उन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की वसीयत और नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत और वसीयत की। यानी ये बताया कि हर इंसान खसारे में है सिवाय उनके जिन्होंने ये चार काम किए हों, ईमान, अमल सालेह या नेक अमल, और हक की एक दूसरे को नसीहत करना, हक और सब्र की एक दूसरे को नसीहत करना। जो लोग ये चार काम करेंगे वो तो इस खसारे से महफूज रहेंगे और बाकी सब लोग खसारे में हैं। और जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है, वल असर, असर जमाने को कहते हैं, वक्त को कहते हैं, वक्त की कसम खाकर यह बात फरमाई। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला को अपनी कोई बात कहने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला जो बात भी फरमाएंगे वो 16 आने दुरुस्त होगी, उसमें किसी गलती का एहतमाल नहीं, उसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात अपने कलाम में जोर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ चीजों की कस्में खाते हैं। और हज़रात उलमाए किराम ने फरमाया कि आम तौर से जिस चीज की कसम खाई जा रही है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वो दरहकीकत दलील होती है उस बात की जो आगे फरमाई गई है। यानी जब यह कहा कि जमाने की कसम या वक्त की कसम तमाम इंसान खसारे में हैं, तो इसका मतलब यह है कि वक्त की और जमाने की हकीकत पर अगर गौर करोगे तो ये बात वाज़े हो जाएगी कि इंसान खतरे में है। वो कैसे? वो इस तरह कि हर इंसान ये बात जानता है और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं कि जो शख्स भी इस दुनिया में आता है वो हमेशा के लिए नहीं आता। एक वक्त आता है जब वो उसको दुनिया से जाना होता है, मौत बरहक है। ये वो हकीकत है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, मुसलमान, गैर मुस्लिम, नेक, फासिक फाजिल, बूढ़ा जवान, हर शख्स इस बात पर मुत्तफिक है, किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं कि एक न एक दिन हर शख्स को दुनिया से जाना है, दुनिया से उसको रुखसत होना है। जिसका और साथ ही ये बात भी सब को मालूम है कि किसी के दुनिया से जाने का वक्त यकीनी तौर पर कोई नहीं बता सकता कितने दिन वो इस दुनिया में रहेगा, किसी को इस बात का इल्म नहीं हो सकता। साइंस तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई लेकिन आज तक कोई ऐसा फार्मूला दरियाफ्त नहीं हुआ जिसके जरिए यह बताया जा सके कि फलां शख्स कितने दिन जिंदा रहेगा और कब उसको मौत आ जाएगी। तो मौत यकीनी लेकिन उसका वक्त कब आएगी ये वक्त गैर यकीनी है, किसी को उसको उसका पता नहीं। जिसके माने यह है कि हर इंसान जब दुनिया में आता है तो एक मखसूस वक्त लेकर आता है और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाता है। वो कितना वक्त लेकर आया है ये किसी को मालूम नहीं, न उसके मालूम होने का कोई रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में ये बात फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है तो वो एक वक्त लेकर आया है और वो वक्त उसका सरमाया है, उसकी दौलत है। अगर इस वक्त को सही इस्तेमाल करेगा तो मरने के बाद की अबदी जिंदगी के अंदर उसको सलाह और फलाह हासिल होगी, खुशहाली की जिंदगी बसर करेगा। और अगर इस वक्त को गलत इस्तेमाल कर लिया या फजूल जाय कर दिया तो ये सारा सरमाया घट गया। और ये सरमाया ऐसा है, वक्त का सरमाया, कि हर आन घट रहा है, हर आन कमी वाकई हो रही है। कुल शख्स अगर फर्ज करो 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की उम्र लेकर आया है, तो हर लम्हे उसकी उम्र घट रही है। तो इसका माना यह है कि सरमाया घट रहा है। अगर कोई तिजारत करता है तो तिजारत में सरमाया लगाता है, सरमाया लगाया, अगर वो सरमाया घट रहा है, कमी आ रही है, तो यही खसारा है, इसी का नाम नुकसान है। इल्ला ये कि वो इस तरह घट रहा हो कि उसके बदले में उसको कोई दूसरी चीज मिल रही हो, नफा हासिल हो रहा हो, तब तो वो फायदा है। लेकिन अगर सरमाया तो घट रहा है और उसके बदले में कोई चीज हासिल नहीं हो रही तो इसी का नाम खसारा है। हर आन हर लम्हे इंसान की जिंदगी का सरमाया घट रहा है, उसमें कमी वाकई हो रही है, लिहाजा खसारे में है। ये जो आजकल रिवाज पड़ा हुआ है सालगिरह मनाने का, कि किसी शख्स की उम्र का जब तारीख पैदाइश आती है तो सालगिरह मनाई जाती है। लोगों में ये गैर मुस्लिमों के तरीके हमारे अंदर भी जारी हो गए हैं। लोग सालगिरह मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि अब मैं इतने साल का हो गया, केक काटे जाते हैं, शमें जलाई जाती हैं मगरिब के तकलीद में और खुशी मनाई जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये खुशी मनाने का नहीं बल्कि अफसोस करने का वक्त है कि जितना सरमाया लेकर आए थे उसमें से एक साल और कम हो गया। इसीलिए अकबर इलाहाबादी मरहूम ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस बात को कहा है कि जब साल गिरा हुई तो उकदा ये खुला, जब साल गिरा हुई तो उकदा ये खुला, या और गिरा से एक बरस जाता है। यानी गिरा में जितने बरस लेकर आए थे साल गिरा के मौके पर एक बरस और चला गया, हमारे हाथ से निकल गया। तो ये कोई खुशी मनाने का मौका नहीं है बल्कि ये अफसोस का मौका है कि जितना सरमाया लेकर आए थे उसमें कमी वाकई हो गई। मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कद्दसल्लाहु तआला सिर्रहु, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो हर साल जब अपनी पैदाइश की तारीख आती थी तो एक आम तौर से कई नज्में उन्होंने कही हैं जिसका नाम रखते थे उम्र रफ्ता का मरसिया, यानी जो उम्र चली गई उसका मरसिया, कि हमने वो उम्र का वो लम्हात जाय कर दिए और गफलत में जाय कर दिए और किसी मुफीद काम में न लगाए, इस पर अफसोस का इजहार करते। तो साल गिरा तो दरहकीकत एक अफसोस का मकाम है कि एक साल हमारे हाथ से और चला गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो तुम्हें जिंदगी के लम्हात मिले हैं, ये जिंदगी के लम्हात तुम्हारे लिए इंतहाई कीमती हैं, बहुत बड़ा सरमाया है। इस सरमाए को अगर सही इस्तेमाल कर लोगे तो फिर आखिरत में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे लिए अबदी जिंदगी खुशहाल जिंदगी है। अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राविया, वह खुशहाल जिंदगी के अंदर इंसान बसर करेगा। और अगर इनको बेकार जाय कर दिया तो गोया सारा सरमाया लुटा दिया। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह एक वाक्य सुनाया करते थे कि ढाका में एक नवाब साहब थे, ढाका जो आज बांग्लादेश का دارالحکومت ہے, وہاں ایک نواب صاحب تھے, بہت رئیس تھے, بڑے زمیندار تھے, بڑے مال و دولت والے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کر گئے, بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کر گئے. ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی, وہ دونوں اس سارے سرمایہ کے وارث بنے, ساری دولت ان کے قبضے میں آ گئی. لیکن دولت کا استعمال کس طرح کیا کہ ایک مرتبہ جو صاحبزادے تھے, نواب صاحب کے صاحبزادے, نواب زادے, وہ کہیں ماچس جلا رہے تھے, تو ماچس جلاتے وقت, دیا سرائی لگاتے وقت جب شعلہ اٹھا تو اس کی بو پسند آ گئی, اس میں سے جو ایک بو نکلتی ہے وہ پسند آ گئی کہ یہ بڑی مزیدار خوشبو ہے. نتیجہ یہ کہ انہوں نے, ان کا سارا مشغلہ یہ ہو گیا کہ ماچسیں خریدتے اور اس کو جلاتے اور اس کی خوشبو سونگتے. روز معلوم ہوا کہ روزانہ ماچسوں کے ڈھیر آ رہے ہیں, اور صاحبزادے اس خوشبو کو سونگنے کے شوق میں وہ ماچسیں جلا رہے ہیں, دیا سلائی لگا رہے ہیں اور اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں. یہاں تک کہ اس زمانے کے لحاظ سے سینکڑوں ہزاروں روپیہ روزانہ ماچسیں جلانے کے اوپر خرچ ہو رہا. صاحبزادی جو تھی وہ ایک مرتبہ کہیں بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے گئی, تو ریشمی کپڑا خریدا, تو جو بیچنے والا تھا اس نے کپڑے کو پھاڑ کر, ناپ کر کے, جتنا کپڑا خریدنا تھا وہ ناپ کر, اس کو بیچ میں سے پھاڑتے ہیں, تو اس کو پھاڑ کر دیا, تو صاحبزادی کو وہ کپڑا پھاڑنے کی آواز پسند آ گئی کہ یہ کپڑا پھاڑنے سے جو آواز نکل رہی ہے یہ بڑی بڑی بہترین آواز ہے, اس کا شوق پیدا, اس آواز کو سننے کا شوق پیدا ہو گیا. چنانچہ انہوں نے جو اپنی دولت کا استعمال اس طرح کیا کہ روزانہ تھان کے تھان آ رہے ہیں ریشمی کپڑوں کے اور ان کو پھاڑا جا رہا ہے. ایک ایک نوکر اس کام پر لگا ہوا ہے کہ بھئی روزانہ تم یہ کپڑے کو, تھان کو نکالو اور پھاڑو. وہ پھاڑتے اور صاحبزادی جو ہیں اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتی تھی. یہاں تک کہ سارا سال یہ سلسلہ جاری رہا, وہ ماچسوں پر دولت برباد کرتے رہے اور یہ کپڑا پھاڑنے پر دولت برباد کرتی رہی, یہاں تک کہ سارا کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا. اور ختم ہونے کے بعد یہ دونوں اتنے قلاش ہو گئے, دیوالیہ ہو گئے, اتنے مفلس ہو گئے کہ اسی بیگم بازار کے نام سے ایک بازار ہے, اس میں جا کر بھیک مانگا کرتے تھے. تو سارا سرمایہ, اتنا بڑا سرمایہ جو نواب صاحب چھوڑ کر گئے تھے, وہ اس فضول مشغلے میں ضائع کر دیا, دولت ختم ہو گئی اور بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے. آج اگر ہم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, یہ قصہ بیان کرتے ہیں, تو ہنسی آتی ہے کہ کیسے بیوقوف لوگ تھے, کیسے احمق تھے کہ کتنی بڑی دولت ضائع کر دی. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ اپنی زندگی کے سرمایہ کو بھی اسی طرح ضائع کر رہے ہیں. یہ سرمایہ ایسا ہے کہ ایک لمحہ, ایک منٹ, ایک ایک منٹ اس کا قیمتی ہے. اگر ایک لمحے میں زبان سے ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں, دل سے ایک لمحے میں کہہ دیا, حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے, اتنی بڑی دولت ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے, اور الحمدللہ کہہ دینے سے تملا المیزان, حدیث میں آتا ہے کہ یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے یہ الحمدللہ کا کلمہ. تو یہ اوقات زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما رکھے ہیں, اگر ان کا صحیح استعمال ہو और इसको अल्लाह ताला के जिक्र में अल्लाह ताला की इताअत में इस्तेमाल करें तो एक एक लम्हे में खजाने जमा हो रहे हैं, मुनाफे के आखिरत के अंदर मुनाफे के खजाने जमा हो रहे हैं। लेकिन हम है कि बेपरवाही में, फजूल मशगलों में, लायानी कामों में इन औकात को जाय कर रहे हैं। यह है वो हकीकत जो कुरान कहता है कि इंसान अलफी खुजर, इंसान बड़े खतारे में है। अल्लाह ताला ने ये बड़ी नेमत दी है जिंदगी की, दो नेमत बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने मौत की तमन्ना करने से मना किया। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत की कोई तमन्ना न करे, ला तमन्ना ही मौत नजर अभी बाद औकात किसी को कोई परेशानी पेश आती है, किसी को कोई तकलीफ होती है, उसकी वजह से बाद औकात दुआ करने लगता है, तमन्ना करने लगता है कि इससे अच्छा तो मौत ही आ जाती। तो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया और खुदकुशी को हराम करार दिया, अपने आप को कत्ल कर देना, खाक कितनी ही मुसीबत तुम्हें मालूम हो रही हो, खुदकुशी करना किसी हालत में भी जायज नहीं, हराम है, बिल्कुल हराम मौत है। खुदकुशी करने वाले की मौत हराम मौत है। लेकिन क्यों है ये? इसलिए कि ये जमात जिंदगी जो मिले हुए हैं, अगर इनका सही इस्तेमाल कर ले आदमी तो उसकी सारी गंद कट सकती है। बाद औकात ऐसा हो सकता है कि एक लम्हे में इंसान जहन्नम के सातवें तबके से निकलकर जन्नत के आला तरीन तबके में पहुंच जाए। 70 साल पुराना काफिर है, गुनहगार है, फासिक व फाजिर है, हर तरह के गुनाहों में मुब्तला है, लेकिन 70 साल के बाद एक लम्हे में अगर वो अल्लाह तबारक व ताला से रुजू करके सिद्क दिल से माफी मांग ले, तौबा कर ले, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ऐ अल्लाह मैं आपसे तमाम गुनाहों की माफी मांगता हूं और तौबा करता हूं, तो 70 साल की जिंदगी के सारे अमल अल्लाह ताला खत्म करके उसको जन्नत में पहुंचा दे। तो ये जिंदगी का एक एक लम्हा इतने कीमती है। आजकल एक मसला चला हुआ है जिसको कहते हैं मर्सी किलिंग अंग्रेजी में, यानी एक शख्स है जो बहुत सख्त बीमार है और दर्द की शिद्दत में मुबतला है, कोई तकलीफ में मुबतला है, तो बाज लोग ये कहते हैं कि उसको इस तकलीफ से निजात देने के लिए कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि उसको जल्दी मौत आ जाए। इसको कहते हैं कि यह हम उसके ऊपर तरस खाकर उसको जिंदगी से महरूम कर रहे हैं, जिंदगी से उसको, जिंदगी उसके खत्म कर रहे हैं ताकि इसकी तकलीफ खत्म हो जाए। तकलीफ खत्म करने के लिए तो कहते हैं मर्सी किलिंग, यानी ये रहमत की का कत्ल है, कि कत्ल तो है लेकिन ये इसलिए है ताकि उसके ऊपर रहमत रहम खाया जाए, तरस खाया जाए। ये बिल्कुल ही बेहुदा बात है, इस वास्ते कि तुम्हें नहीं मालूम कि उस तकलीफ में जो उसको तकलीफ हो रही है उसके दर्जात कितने बुलंद हो रहे हैं, उसके कितने गुनाह माफ हो रहे हैं, और तुम्हें क्या पता कि अल्लाह तबारक व तआला किसी वक्त उसको तकलीफ से निजात दे दें, या इसी जिंदगी के अंदर तकलीफ की जिंदगी में उसके मुंह से कोई ऐसा कलेमा निकल जाए तौबा का, इस्तगफार का, अल्लाह ताला के जिक्र का, जो उसकी सारी जिंदगी की गंध काट दे। तो कभी ना मौत की तमन्ना करनी चाहिए, ना मौत का इकदाम अपने लिए करना चाहिए, ना दूसरे के लिए करना चाहिए। इसीलिए शरीयत ने इस कायनात में सबसे बड़ा जुर्म किसी बेगुनाह को कत्ल करने को करार दिया है। किसी बेगुनाह को कत्ल करना, ये कहते हैं फकानमा कतल नास जमीया, जो शख्स किसी बेगुनाह को कत्ल करे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, इतना बड़ा गुनाह करार दिया। और उसके लिए कुरान करीम में फरमाया कि जज़ाहू जहन्नम खालिदन फीहा, उसका बदला जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इतनी बड़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्यों? इसलिए कि तुमने उसकी जिंदगी का खात्मा अपने हाथ से करने की कोशिश की। अगर तुम ये न करते तो पता नहीं वो कितने अपने दर्जात कमा लेता अपनी जिंदगी के अंदर। तो इसलिए जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा ही कीमती है, इसकी कदर पहचानो, इसको सही मकसद पर खर्च करने की कोशिश करो और फजूलियात से अपने आप को बचाओ। इस एक एक लम्हे को चलते फिरते उठते बैठते जो भी काम कर रहे हो अगर अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में सर्व करो तो ये सारा वक्त तुम्हारा काम में लग रहा है और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो रहा है। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह मुझे कोई मुख्तसर नसीहत फरमा दीजिए, मुख्तसर नसीहत फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया कि अन यकून लिसानु का रतबम बिज़िक्रिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं मुख्तसर नसीहत ये करता हूं कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी हर वक्त तुम्हारी जबान पर कोई अल्लाह ताला का जिक्र रहे, ये नसीहत करता हूं मुख्तसर से। ये क्यों? ताकि ये लम्हात जिंदगी किसी ना किसी काम में लगते रहे, आखिरत के काम में लगते रहे। उस वक्त तो ऐसा होता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को तौफीक हो जाती है, नमाज का वक्त है, नमाज के लिए आ गया, रमजान का महीना है तो रोजे रख लिए, ये वो वक्त वो तो बाकायदा इबादतें करता ही है। लेकिन चलते फिरते उठते बैठते जो औकात हम गुजार रहे हैं उनको भी अपनी आखिरत का जखीरा बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो जबान पर आ जाए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ, अल्लाह तआला का शुक्र, अल्लाह तआला से दुआ, दुआ भी अल्लाह तआला के लिए, अल्लाह तआला से मांगना ये भी एक जिक्र का शोबा है। तो कुरान करीम जो फरमा रहा है कि इस औकात जिंदगी को अपने गनीमत समझो, और गनीमत समझो समझो कि अगर ये बेकार जाय हो गए तो बहुत बड़ा अजीम खसारा है। तो इस खसारे से बचने का रास्ता ये बताया कि ईमान हो, अमल साले हो, नेक अमल हो, गुनाहों से इज्तनाब हो, अल्लाह ताला की इताअत हो, और सिर्फ इतना ही काफी नहीं बल्कि एक दूसरे को हक की और सब्र की नसीहत भी करें। हक की नसीहत ये के जो नेक काम है उनकी नसीहत की जाए, और सब्र की नसीहत ये कि सब्र के माना है अपने नफ्स को रोकना, गुनाहों से रोकना। किसी शख्स को गुनाह में मुब्तला देख रहे हो तो उसको प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से नसीहत करो कि भाई ये गुनाह का काम है, ऐसा मत करो। तो इंसान की जिम्मेदारी ये भी है कि खुद भी नेक बने और अपने अमाल को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक बनाए और दूसरों को भी हक की और सब्र की नसीहत करे। ये चार काम कर लिए, ईमान दुरुस्त हो गया, नेक अमल हो गए और दूसरों को नसीहत हक और सब्र की हो गई, तो फरमाते हैं बारी ताला के खसारे से बच जाओगे, वरना तो खसारा ही खसारा है, ये सारा जिंदगी का सरमाया जाया हो गया। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल करम से, अपनी रहमत से हमें अपने औकात जिंदगी की सही कदर पहचानने की तौफीक अता फरमाए और उसको अपने रजा के कामों में सर्व करने की तौफीक अता फरमाए। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.